ओम शांति। जो पीछे भाई भाई बैठे वो आगे नजदीक आ जाए। आप सबने आज सवेरे से राजयोग के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हासिल की होगी। कौन कौन से सेशन हुए आपके? पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और राजयोग। नहीं सुनाई दिया? इंट्रोडक्टरी सेशन राजयोग का। राजयोग क्या होता है, कैसे अभ्यास करें? तो आपको जैसे बताया गया है कि राजयोग में मुख्य रूप से तीन बातों की जानकारी जरूरी है। एक है साधक, साध्य और साधना। राजयोग को सीखने की इच्छा रखने वाला मैं साधक कौन हूं? Who am I? मैं कौन हूं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। अगर हम इसको पहेली कहें तो अतिशोक्ति न होगी, क्योंकि इस पहेली का, इस पजल का अभी तक किसी ने आंसर नहीं किया है। एक बार कहते हैं प्रोफेसर आइंस्टाइन अपनी क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो अचानक एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर डू यू नो हु यू आर? तो उसका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ। उसने कहा, व्हाट अ फनी क्वेश्चन दिस बॉय इज आस्किंग, डजंट ही अवेयर दैट आई एम हिज प्रोफेसर? बाद में सोचता है कि ये बिल्कुल ठीक पूछ रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अगर मैं इस बात को जान लेता तो दुनिया को बदल कर रख देता। अब आप सोचिए, एक इतना बड़ा विज्ञान का वेता होने के बाद भी उन्होंने महसूस किया कि अभी बहुत कुछ जानने का बाकी है। ऐसे ही विवेकानंद जी जब अपने गुरु के पास गए, उन्हें साक्षात्कार तो बाद में हुआ जब गुरु के सन्मुख बैठे, और सबसे पहले उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। अगर मैं ये बात जानता तो आपके पास क्यों आता? तो सचमुच में हम सब अपने बारे में नहीं जानते हैं। कई तो ये हैं जो राजयोग को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो तो ठीक है नहीं जानते, पर मैं समझती हूं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वह भी नहीं जानते मैं कौन हूं। जानने का मतलब होता है, जानने का मतलब अगर हमने उस गहराई को जान लिया है तो फिर वो हमारे स्वरूप से दिखाई देना चाहिए। कोई बात अगर नहीं दिखाई देती तो लगता है इसको बात समझ में नहीं आई है। तो अगर हम आपसे पूछें आप कौन हैं तो आप क्या जवाब देंगे? नई ज्ञान है। आप देखेंगे हमारे दो सेल्फ हैं, कहते ना नो दाई सेल्फ रियलाइज दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। तो हमारे दो सेल्फ हैं, एक है आउटर सेल्फ और एक है इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई देता है, इस जगत के साथ कनेक्टेड है, जैसे हमारा शरीर है हमारा बॉडी बिल्डअप, आपकी फिजिकल इमेज, पर्सनैलिटी, है ना, या जाति, धर्म, देश, किस देश में रहने वाले हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या जात है आपकी, आपकी क्वालिफिकेशन, डिजिग्नेशन, नेशनैलिटी, ये सारा किस में आता है, आउटर सेल्फ में आता है। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इनर सेल्फ के बारे में हम सभी अनभिज्ञ हैं। तो इनर सेल्फ क्या है? एक होता है एक्वायर्ड सेल्फ, इनेट सेल्फ। एक्वायर्ड सेल्फ का मतलब है इस दुनिया में आने के बाद जो मैंने एक्वायर किया, वो सारी बात। और इनेट का मतलब जो मैं वास्तव में हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी, मेरी पहचान। तो एक्वायर्ड सेल्फ का जो ईगो है या कॉन्शियसनेस है, वो ईगो डेवलप करता है। लेकिन अगर हम अपने इनेट सेल्फ को जान लेते हैं तो हमारा ईगो खत्म होता चला जाता है। तो इसलिए उसकी जानकारी जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। तो आप देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरापन बहुत है, मेरा स्टेटस, मेरी पहचान। लेकिन हम सारा दिन इस्तेमाल करने के बाद नहीं जानते कि मैं क्या है और मेरा क्या है, इसके अंतर को नहीं समझते हैं। जब आपसे हम पूछते हैं आप कौन हैं, तो कभी कभी आप अपने आप को डूइंग पार्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं। आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, या फिर कहेंगे मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं किसी धर्म से, या कहेंगे मैं लड़की हूं, लड़का हूं, या अपने मैं जिस वस्त्र में हम आए हैं उससे अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। वास्तव में ये दो सेपरेट चीजें हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये मेरी पहचान नहीं है। डॉक्टर तो मैं आज बना हूं, पर जब मैं इस स्टेटस में नहीं था, यहां तक नहीं पहुंचा था, तब भी तो मैं का अस्तित्व था। वो मैं जो इस शरीर में प्रवेश होने से पहले भी थी, आज भी है, और इसका त्याग कर देने के बाद भी रहेगा। वो मैं कौन हूं? ऐसे अपने आप से पूछना है तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं आत्मा हूं। हिंदी में हम आत्मा कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, आई एम अ सोल, और मुस्लिम लोग कहते हैं रूह। रूह का मतलब भी आत्मा है। मैं आत्मा इन चरम चक्षुओं से देखती हूं, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती हूं, मैं आत्मा हाथों के द्वारा कर्म करती हूं, पर ये सब कर्म करने वाली इन इंद्रियों के माध्यम से मैं कौन हूं? तो ये जो शरीर है, जो मेरे हाथ, नाक, मुंह, कान, जिसके माध्यम से मैं आपसे संपर्क साधती हूं, ये मात्र इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूं। ये एक साधन है जैसे ये माइक्रोफोन है, अगर ये माइक्रोफोन आपके और मेरे बीच से हटा दिया जाए तो आप हमको सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोफोन भी आप तक कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, हमारी बात पहुंचाने में। कौन सी शक्ति है जो इस माइक्रोफोन को चला रही है? कौन? लाइट। लाइट, अगर लाइट न रहे तो ये माइक्रोफोन काम नहीं करेगा। मैं आत्मा इस माइक्रोफोन से, मुख रूपी माइक्रोफोन से बात करती हूं, पर इस माइक्रोफोन को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा है। उसको आप लाइट कहें, एनर्जी कहें, सोल कहें, मीनिंग इज द सेम। लाइट के बिना ये सारा इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? बेकार हो जाएंगे, निष्प्राण हो जाएगा शरीर। तो ये अगर हम थोड़ा बार बार चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये मात्र मेरा एक साधन है जिसके माध्यम से मैं आपसे संपर्क साधती हूं, लेकिन इस साधन का भी महत्व है। दिस बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर ये गाड़ी, अगर मैं इसे कहीं ये गाड़ी है और आत्मा इसका चालक है, अब चालक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर उसके पास गाड़ी नहीं है, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? बताएं, नहीं पहुंचेंगे। चालक है बहुत अच्छा, एक्सपर्ट है, गाड़ी नहीं है, या गाड़ी खटारा है, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। गाड़ी का भी महत्व है। और अब इस तरीके से हमने कि गाड़ी अगर आपकी 40 लाख की है, 50 लाख की है, 60 लाख की है, इंपोर्टेड गाड़ी है, और चालक ठीक नहीं है, तो क्या करेगा? बोलो, एक्सीडेंट। आज यही तो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम कई बार शादी करते हैं अपने बच्चे की, तो हम विदेश से अपनी बहू रानी ले आते हैं, कहते हैं जी ये गाड़ी जो है इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड है, बहुत अच्छी है, बड़ी सुंदर है, लेकिन जब व्यवहार में आए तो चालक ठीक नहीं है उसका, तो आइडियाज क्लैश होते हैं, होते हैं ना। आज जो घर घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश मारा मारी है, वो क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं बैलेंस ठीक नहीं है। चालक ठीक है तो गाड़ी ठीक नहीं, गाड़ी बहुत अच्छी है तो चालक ठीक नहीं है, लेकिन दोनों का ही महत्व है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आप इस शरीर को ध्यान ना दें, परंतु एक होता है जीने के लिए खाना और एक है खाने के लिए जीना। जीने के लिए खाना तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खाने के लिए जीना यह तो इंसानियत नहीं है। कई कहते ना भाई दुनिया में आओ, आए हो तो खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। क्या रखा है? फिर कहते क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मौज से रहो, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि जो गाड़ी है, गाड़ियों में भी आप देखेंगे किसी किसी कोई गाड़ी इतनी अच्छी होती है कि उसको रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है, कई गाड़ी डीजल से चलने वाली होती है, कई पेट्रोल से, कईयों में सीएनजी का इंजन लगा होता है। अब जैसा उसमें मशीन होगी उस हिसाब से तो आपको ईंधन देंगे, बोलो देंगे ना। अब पेट्रोल वाली गाड़ी में आप सीएनजी लगा दो, चलेगा? वो तो अगर दोनों सिस्टम है, वो तो आजकल ऐसा बनाया है कि बीच बीच में कहीं अगर वो काम ना करे तो वो काम कर जाए। लेकिन जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, है ना, उसमें डीजल ही चाहिए। पेट्रोल वाली में डीजल लगाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मेरी इस गाड़ी का ढांचा कैसा है? खाओ पियो मौज करो तो कौन सा पेट्रोल चाहिए? मेरा सिस्टम क्या है? मेरा शरीर किसके लिए बना है? इसमें इंजन कैसा है और उसको ईंधन कैसा चाहिए, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। कई मांसाहारी जानवर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही वैसा है, उनके नेल, उनके दांत, उनकी आंतें छोटी होती है, जल्दी मल का त्याग कर देते हैं। हमारे शरीर का तो ढांचा वैसा है ही नहीं। 6 मीटर लंबी इंटेस्टाइन है, कुछ भी आपने ऐसी वैसी चीज डाल दी तो अंदर में क्या हो जाएगा? थोड़े समय बाद वो चीज सड़ने लग जाती है। ना हमारे दांत उस तरीके के हैं, ना नेल उस तरीके के हैं। तो ये समझना है, गाड़ी तो है लेकिन इसको ईंधन कैसा चाहिए? जैसा इंजन होगा वैसा ही तो ईंधन चलेगा ना। तो अगर हमने अपने आप को पहचाना है तो इस गाड़ी को भी हम बहुत अच्छी तरह से चलाना सीख लेंगे। इस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर चीज, हर तरह की मेडिसिन कामयाब नहीं होती है। हर एक का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो हमें भी ये देखना है शरीर के हिसाब से मुझे क्या मुआफिक आता है, क्या नहीं आता है। इस बात को समझता कौन है? कौन समझता है? आत्मा। तो शरीर क्या है? जड़ है। जड़ का मतलब नॉन लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग जड़। और आत्मा चेतन है, इट्स अ लिविंग बीइंग। जड़ और चेतन में क्या अंतर है? गाड़ी अगर उसमें पेट्रोल नहीं है, उसको सर्विस के लिए देना है सर्विस सेंटर पे, इस चीज की जरूरत कौन महसूस करता है? गाड़ी तो खड़ी है, जड़ है, हाँ? ड्राइवर महसूस करता है भाई इसको सर्विस सेंटर पे देना है। ऐसे अगर इसकी गाड़ी में कहीं मैकेनिज्म ठीक नहीं है, या कुछ शरीर ठीक नहीं रहा, या कोई ऑर्गन में डिफेक्ट आ गया, या उसको सर्विस करानी है, उसकी सर्विसिंग करानी है, तो इसको वर्कशॉप तक कौन ले जाएगा? जो चेतन शक्ति आत्मा है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर एक साधन है और मुझे इसको मास्टर करना है, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा इन सर्व कर्म इंद्रियों का राजा हूं, ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं जैसा चाहूं उस हिसाब से इनसे काम लूं। लेकिन आप जानते हैं कि राजा जब भोग विलास में खो जाता है तो उसके कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं, है ना। तो आज आत्मा राजा अपने आप को भूल चुका है और आज हम सभी किसके गुलाम बन गए हैं? हाँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें इसको चलाएं, क्योंकि आंखें देखने के लिए हैं, नो डाउट, लेकिन देखना है किस भाव से, ये डिसाइड कौन करेगा? तो इससे भिन्न एक चैतन्य शक्ति डिसाइड करेगी ना। ऐसे यू आर चॉपिंग सम वेजिटेबल्स, आपने अपने हाथ में नाइफ है, आप सब्जी काट रहे हैं, लैक ऑफ अटेंशन, सब्जी काटते काटते आपने अपनी उंगली पर उस चीज को ले गए। अब नाइफ ये नहीं जानता है कि क्या काटना है, उसका काम केवल काटना है, उसके सामने जो भी ले आओगे वो अपना काम करेगा। तो क्या काटना है क्या नहीं काटना है ये डिसाइड कौन करेगा? बोलो, चेतन शक्ति करेगी ना। तो नाइफ को तो हम इंस्ट्रूमेंट मान रहे हैं, लेकिन इस हाथ से मैं ऑपरेट कर रही हूं ये भी इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मैं देह के अभिमान में आसक्त हूं। तो जब मुझे समझ में आ जाता है कि ये शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, इस हाथ को आप बढ़ाएं, किसी से दोस्ती करें या किसी से दुश्मनी करें, ये डिसाइड कौन करेगा? चैतन्य शक्ति जो इससे भिन्न है। इसने तो केवल डिसीजंस ले करके वो कार्य करना है। तो ये जो मेरा शरीर इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है, मुझे इसका कैसे इस्तेमाल करना है? आंखों से देखना है तो क्या देखना है, कानों से सुनना है तो क्या सुनना है, मुख से कहना है तो मेरा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरा कुछ डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, उस हिसाब से मुझे अपने मुख से शब्द कहने हैं, या अमर्यादित जो कुछ भी मैं कह दूं चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इससे अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा। आप सभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यह है डिफरेंस आत्मा और शरीर में। तो मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा एक वस्त्र है। अब वस्त्र में तो आप देखिए अलग अलग कलर्स हैं, किसी ने जिस किसी भी कलर का वस्त्र पहना है, लेकिन आप तो उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं ना, वस्त्र थोड़ी देखते हैं। अभी शरीर का भी कलर, इस देह रूपी वस्त्र का भी अलग अलग रंग है, ठीक है, लेकिन मुझे उस रंग से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल ये पता है कि ये वस्त्र मुझे कर्म क्षेत्र पर कर्म के लिए मिला है। नहीं तो आप देखेंगे दुनिया में, अगर आप विदेश में चले जाओ तो काली और गोरी जाति पे ही झगड़ा है, ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद, रंग भेद। ये क्यों है? क्योंकि इससे पहले हम अपने आप को ये शरीर कंसिडर करते थे, मैं शरीर हूं, लेकिन आज समझ में आया मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अगर उस आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो इन भेदों से हटके वासुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है, ठीक है। तो शरीर पांच तत्वों का बना है, जैसे शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जिस चीज का ये शरीर है उसी की ही मुझे आवश्यकता है। इन पांचों ही तत्वों में से किसी एक तत्व की शरीर में कमी आ जाए, यू फील अनकंफर्टेबल, यू फील सफोकेटेड, अच्छा नहीं लगता है। समझो 80% ऑफ माई बॉडी कंटेन्स वाटर। आप जॉगिंग करते हैं, पसीना बाहर आता है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, आपको क्या लगती है? प्यास लगती है, ठीक है। आप कहेंगे आई वॉन्ट ए प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, आपको उसके बजाय अच्छे अच्छे ड्रिंक्स ऑफर किए जाएं, विल इट डू? नो, नहीं। आई वॉन्ट टू हैव ओनली प्लेन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्योंकि मेरा शरीर जल से बना है, मुझे वही चाहिए। मेरा शरीर ऑक्सीजन से बना है, कभी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, दूसरी गैस प्रोवाइड करो इस शरीर को, विल इट डू? नहीं। जो चीज मेरी है वही मुझे चाहिए, इसे तो ऑक्सीजन लगाते हैं ना पेशेंट को। तो जब पांचों ही तत्व का बैलेंस रहता है शरीर में, तब मुझे कंफर्टेबल फील होता है। वैसे ही आत्मा, जैसे शरीर पांच तत्वों का है, आत्मा सात गुणों का मिश्रण है। सोल इज नथिंग बट द एसेंस ऑफ सेवन क्वालिटीज। पहला है नॉलेज, दूसरा प्योरिटी, तीसरा पीस, फिर लव, फिर हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, आई एम अ नॉलेजेबल सोल। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, आई एम अ प्योर सोल। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, आई एम अ लवफुल सोल। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, आई एम अ हैप्पी सोल। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। सारे कितने हैं? सातों गुण है। अगर ये सातों ही गुण मेरे में हैं, इसलिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा। आत्मा अपने मूल स्वरूप में सात गुणों का मिश्रण है। अब आप देखिए, सातों ही गुण हमें चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, बहुत गुस्सा करता है, आदत बन गई है गुस्सा करने की, लेकिन दूसरा अगर उससे गुस्सा करे तो कहते हैं भाई शांति से बात करो, शांति से बात करो। अपनी बारी वो बहुत गुस्सा करेगा। इसका मतलब चाहे वो क्रोध कर रहा है, लेकिन उसको अंदर से आवाज आता है कि क्रोध करना अच्छा नहीं। कई ऐसे भी होते हैं, बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बोल जाते हैं कुछ भी। कहते हैं दीदी मैं वेट कर रहा था मुझे मौका मिले मैं इसको बताऊं, आज मैंने इसको अच्छी तरह से सुना दिया, मेरे को शांति मिल गई। इसका मतलब है कि तरीका आपने कुछ भी अपनाया, लक्ष्य तो आपका क्या था? शांति का था। अगर हमें समझ में आ जाए कि शांति पाने का तरीका कुछ और है, तो शायद हम इल्लीगल तरीके ना अपनाएं। बहुत लोग कहते हैं कि से बोलते हैं कई कि हम बोलते हैं ना भाई आप डिस वैल्यूज, इसकी क्या आवश्यकता है, छोड़ देना चाहिए। तो वो ये कहते हैं या विकार की बात, विकार नहीं होने चाहिए। कहते हैं विकार नहीं होने चाहिए, विकार तो मानव मन का भोजन है। जैसे भोजन के बिना सर्वाइवल मुश्किल है, ऐसे इनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो विकार मानव मन की भूख नहीं है, नहीं है, नहीं है। मानव मन की भूख सुख शांति है। सो बी 100%, कितना? 100% सुख शांति है। उस सुख शांति को पाने के लिए मानव ने विकारों का सहारा लिया, लेकिन कहते हैं जो जो दवा की मर्ज बढ़ती चली गई, जितने भी उसने सुख शांति को पाने के साधन अपनाए, उतना सुख शांति उससे दूर हो गई। जो भी हमने भोग विलास के साधन अपनाए, अल्टीमेट एम क्या था? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी कंटेंटेड, पीसफुल। लेकिन मिला कहां? अगर ये पता चल जाए कि सुख शांति जो मानव मन की भूख है, इसको पाने का तरीका कुछ और है, फिर व्यक्ति उनका सहारा लेगा? बताएं, नहीं लेगा। तो मेरे जो मानव मन की भूख है, वो ये सातों ही गुण अगर मेरे में है तो मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उदास होंगे, निराश होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे, परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे। उदास का मतलब क्या है? दास। किसी भी चीज के जब आप दास हैं इसलिए उदास हैं। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या हो जाऊंगी? उदास हो जाऊंगी। तो आप बताइए, ये जो विकार हैं, चाहे वो लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, ईगो, हेट्रेड, एनिमोसिटी, लेग पुलिंग, ये सारे मुझे डिपेंडेंट बनाने वाले हैं, गुलाम बनाने वाले हैं या स्वतंत्र बनाने वाले हैं? गुलाम है ना। वैसे अगर आप किसी को कहो भाई आप ये बात कह रहे हैं, आपको क्या कैसा लगता है, ये तो मान लेनी चाहिए भाई, अच्छी बात है, तो कहते हैं हमको इनके विचारों के गुलाम थोड़ी है भाई, हम कोई गुलाम थोड़ी है, हम कभी किसी गुलामी नहीं करते, लेकिन हम सारे ही गुलाम हैं, सारे ही गुलाम हैं। आप में से कोई उदास होता है कभी? हाँ बोलो, या कभी नहीं होते? जो कहते हैं हम गुलाम होते हैं वो हाथ उठाओ, नहीं जो उदास होते हैं, सॉरी उदास होते हैं, अच्छा जो उदास नहीं होते कभी भी वो हाथ उठाओ, कभी भी उदास नहीं होते कभी भी, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर तीन बच्चों ने भी हाथ उठाया तो अच्छी बात है। कहीं भी उदासी आती है इसका मतलब हम कहीं दास हैं, इसलिए उदास है। अगर मैं आत्मा राजा हूं तो मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, तो इन सातों ही गुणों का हम एक्सपीरियंस करेंगे। और आप अनुभव करके देखें, ये सातों गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। है हमारे अंदर, लेकिन ये देह का अभिमान उसको एक्सपीरियंस करने नहीं देता है, क्योंकि जब देह का अभिमान है तो ये सारे विकार आप में आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जैसे ही मैं इस फिजिकल कवर को उतार के आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती हूं तो फिर ये सारे ही गुण आप एक्सपीरियंस करेंगे। कितना आसान है तरीका परमात्मा ने बताया। अभी तक हम इनको पाने के लिए सोचते थे जंगल का रास्ता लें, अब पता चला कि रहना घर में ही है, खाली अभ्यास करना है आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का। तो सोल कॉन्शियसनेस का मतलब अनकॉन्शियस नहीं, डेड कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस मीन बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, देह का अभिमान ना हो। जो भी हम कर्म करें हमारे कर्म में ये सातों ही गुण रिफ्लेक्ट हो, ज्ञान, पवित्रता, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्षण है, वो पवित्र होगा। अगर पवित्रता की कमी है इसका मतलब ज्ञान की कमी है, ये आध्यात्म ज्ञान की बात है। और पवित्र आत्मा बिल्कुल उसकी इंद्रियां शांत होंगी, वो मिस्चीवियस काम कोई नहीं करेगा, चंचलता नहीं होगी। अगर मेरी शांति खंडित है इसका मतलब मेरी पवित्रता खंडित हो चुकी है। और शांत आत्मा जो अंदर से शांत है वो सबसे प्रेम से पेश आएगा, है? ये बड़ी गहरी बात है। जैसे कोई गुस्सा करता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है देखो इसने आपके ऊपर गुस्सा किया, इतनी बड़ी बात कर ली इसने, आपके ऊपर गुस्सा करने का दुस्साहस किया, तो हम उनको बोलते हैं भाई उसने हमारे ऊपर थोड़ी गुस्सा किया, वो बेचारा आज अंदर से अशांत है, डिस्टर्ब्ड है, तो जैसा वो स्वयं होगा वही तो अपनी स्थिति को अपने कर्म से रिफ्लेक्ट करेगा, आपके साथ थोड़ी गुस्सा किया उसने, सोच सकते हैं ऐसा? और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि हम जो भी दूसरे के बारे में प्रोजेक्ट करते हैं ना, वो हमारी अपनी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। हम दूसरे के बारे में वही प्रोजेक्ट करेंगे जो मेरी अपनी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होगा। तो जो शांत होगा वो प्रेम से पेश आएगा, और जब आप सबसे प्रेम से पेश आते हैं तो उनकी अंदर की दुआएं आपको क्या देंगी? सुख देंगी। और सुख की असीम स्टेज का नाम आनंद है। और जब ये सारे आपको मिल जाएंगी देन आप में विल पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। फिर शक्ति आ गई, विल पावर आ गई, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी मुश्किल नहीं। असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं रहेगा। ये बहुत गहरा ज्ञान है, सिर्फ इसको चिंतन के माध्यम से अपने कर्म में लाना है। आप एक कदम उठाएंगे परमात्मा आपको हेल्प करेगा। अब आत्मा क्या चीज है? चैतन्य शक्ति है। चैतन्य का मतलब जिसमें सोचने का, सोचना, कल्पना करना, पुरुषार्थ करना, अंडरस्टैंड करना, डिसीजंस लेना, निष्कर्ष निकालना, मेमोराइज करना, ये चैतन्यता के की अभिव्यक्ति आत्मा किस माध्यम से करती है? तीन शक्तियों के माध्यम से, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। तो जैसे शरीर के अंग है हाथ, नाक, मुंह, कान, जीभ, त्वचा, इसे आत्मा की भी तीन फैकल्टीज हैं, तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। मन क्या है? मन सोचने की शक्ति का नाम है। माइंड इज थिंकिंग फैकल्टी। सोचने की शक्ति का नाम क्या है? मन है। और मन में अगर आप देखिए, नॉर्मल ह्यूमन माइंड एक मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न करता है, एक दिन में 33,000 थॉट्स जनरेट करता है। और अगर आप टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो ज्यादा भी हो सकता है। और जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, अगर हम इन विचारों को क्लासिफाई करें तो मुख्य रूप से हमारे मन में चार प्रकार के विचार आते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेसेसरी, और चौथा वेस्ट। सकारात्मक चिंतन, नकारात्मक चिंतन, आवश्यक चिंतन और व्यर्थ का चिंतन, ये चार प्रकार की सोच मन में आती है। लेकिन जब हमें ज्ञान मिल जाता है कि मन में चार प्रकार के विचार आते हैं, तो हम एकांत में बैठ के अपने को चेक कर सकते हैं कि सवेरे से लेकर रात्रि तक मेरे मन में ज्यादातर कौन सी क्वालिटी के विचार आते हैं। ठीक है ना? पॉजिटिव का मतलब हम जैसे कई बार कहते हैं कि सी द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन, यानी किसी भी चीज का, किसी भी परिस्थिति आपके सामने है या जो भी व्यक्ति है उसका एटीट्यूड है, उसके उजले पक्ष को देखना, किसी परिस्थिति के उजले पक्ष को देखना, वो है पॉजिटिव। और धुंधला पक्ष देखना, वो है नेगेटिव। ठीक है? ऐसा होता है ना, अभी आपने सेशन किया एक कि आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो ये है कि मेरा जैसा दृष्टिकोण है वैसा मुझे वो दिखाई देगा, है ना। जैसे कहते हैं एक बार कुछ लोग एक के घर में सत्संग था, उसने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया कि हमारे घर में गुरुजी आएंगे, सत्संग है, आप आमंत्रित हैं, अवश्य आएं। अब रिश्तेदारी में इसलिए भी लोग आ जाते हैं कि आज हम इनके यहां नहीं जाएंगे तो कल हमारे पास भी नहीं आएंगे, तो कई बार फेथ नहीं होता पर लोग आ जाते हैं। तो जब सत्संग चल रहा था तो क्या हुआ, एक ऐसी घटना कि वो कमरे की छत कलैप्स हो गई। अब उसमें से कई ऐसे थे जो नकारात्मक सोचने वाले थे, उन्होंने कहा ओहो ओहो ये तो अहित हो गया, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, हम तो पहले ही कहते हैं ये सब फ्रॉड है, इससे कोई फायदा नहीं होता, ये सत्संग क्या है, नथिंग, कितना अहित हो गया। देखो जी उन्होंने सत्संग कराया फिर भी ऐसा हो गया, कोई रोक पाया। अब वो ऐसे चिंतन करने लगे, उसमें से कुछ पॉजिटिव भी थे, उसने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, यही तो सत्संग का मिरेकल है, कमाल है, छत तो गिरी, इसने तो गिरना ही था, तो किसी को चोट तक नहीं आई, यही कितनी बड़ी बात है। तो देखो परिस्थिति तो एक थी, परंतु जिसका सकारात्मक सोच थी वो खुश रहेगा, और जिसकी नकारात्मक सोच होगी वो क्या होगा, वो क्या होगा, दुखी रहेगा। इसका मतलब मेरे सुख या दुख का कारण कोई इंसान नहीं है, मेरे सुख या दुख का कारण मेरी सोच है ना। इससे हम ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ माइंड इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, इसको आप मास्टर कर लें इतना ट्रेन अप कर लें कि दुनिया की ताकत आपको कोई सेक न पहुंचा सके, कितने भी टफ एंड टफ सर्कमस्टांसेस हो, टफ सिचुएशंस हो, टिपिकल पर्सनैलिटीज आपके कांटेक्ट में आए और आप अपने को कंफर्टेबल फील करें सबके साथ रह के, उसमें सारा खेल किसका है बताओ, मन का है ना। तभी तो कहते हैं मन ही हंसाए मन ही रुलाए, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है आप खुश रहेंगे हंसते रहेंगे, नेगेटिव है तो कोई आपको खुश कर ही नहीं सकता। हमारे पास कितने तो काउंसलिंग के लोग आते रहते हैं, लाइन लगी रहती है, खासकर आजकल बच्चे थोड़ी थोड़ी बात में नेगेटिव सोच लेते हैं, छोटी छोटी बात में एज्यूम कर लेते हैं कि देखो मेरी ये मॉम है, मेरी ये बड़ी मॉम है, ये हमेशा मेरे लिए ऐसा सोचती है, मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बार फेल किया है, मुझे चांस मिलने लगा ऑलवेज बीच में आकर के मुझे साइड कर देती है, मैंने आज नहीं देखा दीदी, मैं पिछले 10 साल से देख रही हूं, और तेरी उम्र कितनी है, 14 साल तो तेरी उम्र है सारी, तू 4 साल में इतनी मैच्योर्ड हो गई थी, इस प्रकार की मैच्योरिटी आनी चाहिए, राइट नहीं है। जैसी फीडिंग देंगे ना हम वैसा ही बच्चों को फीडिंग अच्छी अच्छी दो। कई बार रिश्तेदारों में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाएंगी ना, हस्बैंड वाइफ आपस में बातचीत करेंगे कि देखो मेरी देवरानी ने ये किया, मेरी जिठानी ने ये किया, अपने बच्चों को भी सिखा देंगे, बेटे बात करने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है ना उसका बेटा कैसे करता है, बी अवेयर, नहीं करनी बात। तो बच्चे में आप क्या फीड कर रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं, नेगेटिविटी, बड़ा होके आपके ऊपर आने वाला है वो। और बल्कि अगर कोई बच्चा कहे भी सही ना, तो बच्चे को सो व्हाट बेटे, सो व्हाट, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हारा बड़ा भैया ही तो है, उसने कह दिया तो क्या हो गया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं अपने घर का कल्याण करना चाहती हूं, मैं बच्चों को नेगेटिविटी से कलर न करूं, मुझे ही नुकसान होने वाला है। ये बातें हम इतनी सीरियस नहीं सोचते हैं, छोटे बच्चे हैं, कोमल है, कोमल मन पे हर घटना का प्रभाव पड़ता है। अगर अभी से हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे, पहले तो इस प्रकार की बातें हम लाए ही नहीं चिंतन में। अगर जरूरी करनी भी है तो अलग से जाके करें, बच्चों के बीच में ऐसी बात ना करें। कभी अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार हम ना दें। हम सोचते हैं अगर हम गरीब हैं कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं चरित्र की गरीबी अगर मेरे में है तब मैं गरीब हूं। मेरी चरित्र की गरीबी नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं दे सकती, संस्कार तो दे सकती हूं। दे सकते हैं नहीं दे सकते? आज सबसे बड़ी दौलत क्या है? संस्कार। कई बच्चे गरीब होते हैं बट इतना उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, बड़ी शान से जीते हैं, संस्कारी हैं, और स्टेज पर आके बोलते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए। बड़ा होके तो भाई क्या काम आते हैं? संस्कार काम आएंगे। तो ये दे सकते हैं नहीं दे सकते? बोलो, दे सकते हैं। तो एक ही सिचुएशन के दो पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती हूं। एक बार हमें मतलब कोई ऐसा आ गए इस हेडक्वार्टर में, तो हम देखते थे थोड़ा सा, वो जैसे कई होते हैं ना, थोड़े आउटस्पोकन होते हैं या कुछ बाह्य जगत से ज्यादा रंगे हुए होते हैं, इतने गंभीर नहीं होते। तो हमने देखा कि वापस में चर्चा कर रहे थे माउंट आबू आके, काफी बड़ा ग्रुप था, तो बड़े खुश थे कुछ लोग, भाई कमाल है यहाँ की मैनेजमेंट फैंटास्टिक, ऑटोमेटिक सब चल रहा है, कोई किसी को ऑर्डर पास करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये तो भाई स्वचलित ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे करके आनंद आ गया। बेस्ट मैनेजमेंट सीखनी हो तो इनसे आकर सीखो। दूसरे को उसने पूछा, आपको कैसा लग रहा है? कहता है मेरे को अच्छा तो लग रहा है सब कुछ, लेकिन एक बात से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसने कहा क्या? कहता है लेकिन इनका खर्चा कैसे चलता है? ये इतना सारा है, ये कहां से आ रहा है? ना तो ये हमें कहते हैं जी कुछ दो, हम अपनी स्वेच्छा से कुछ डालें या ना डालें, ये आ कहां से रहा है इनको? तो देखो कैसा विचार है उसको, अपने विचार से इतने पवित्र स्थल पर आने के बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं भाई, क्योंकि जो अच्छा दान करने वाले होंगे वो कहेंगे भाई हम सबके वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से चलता है, क्योंकि वो काफी करता है खुद, तो सोचते दूसरे भी करते होंगे। और जो जिंदगी में कभी करता ही नहीं होगा वो सोचते सारे मेरे जैसे होंगे। जैसी दृष्टि, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी, हमें तो उनके बोलचाल से समझ में आ जाता है कि ये आत्मा की क्वालिटी क्या है। फिर रहम भी आता है कि चलो इनको थोड़ा अलग से, इनको हम प्यार से समझाएंगे कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे को डिस्करेज ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है ना। तो ऐसे कभी कभी हमारी सोच अपने हिसाब से चलती है। तीसरा क्या है? नेसेसरी, जो आवश्यक विचार है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आपको काम करने हैं आप पहले से प्लान कर लेते हैं कि आज मुझे साउथ दिल्ली जाना है, वेस्ट दिल्ली जाना है, वहां से रिलेटेड मेरे 10 काम हैं, वो प्लान कर लेते हैं, एक ही विजिट में करके आते हैं। तो ये हो गया आपका नेसेसरी। यहां आने के लिए भी तो प्लान किया होगा, किया कि नहीं? किया था, तो पहुंच गए, छुट्टी सैंक्शन करा ली है ना, जो भी आपके जरूरी काम थे। और चौथा जो है वेस्ट। वेस्ट का मतलब, कई लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अगर हमारा वर्तमान पास्ट से जुड़ा हुआ है तो आप पास्ट को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। तो कोई पास्ट की ऐसी घटनाएं जो मेरे बिटर एक्सपीरियंस हैं, अगर मैं उसे याद करूंगी तो वेस्ट है। हाँ, हमारे में ये कहा जाता है कि यू लर्न फ्रॉम द पास्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर, बट बी इन द प्रेजेंट। आप पास से लर्न करो, फ्यूचर के लिए प्लान करो, लेकिन रहो वर्तमान में, है ना। ये मुख्य है कि वेस्ट थॉट को हम कैसे वो करें। तब आप बताओ, चारों ही प्रकार के थॉट्स में से आप किस प्रकार के थॉट्स चाहेंगे? कैसे? पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव इनपुट लेंगे, जितना पॉजिटिव इनपुट लेंगे, जो मेरे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट क्या है कि देखो मैं कहां से कुछ ले रही हूं। आंखें इंपोर्ट कर रही हैं, इंफॉर्मेशन यहां डालती हैं, कान भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुख से मैं कुछ किसी को बोलती हूं, ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। तो हम ये सोचें कि मैं क्या इंपोर्ट कर रही हूं। इसके लिए फिर रोल शुरू होता है बुद्धि का। बुद्धि डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, इट्स अ डिसीजन मेकिंग फैकल्टी। निर्णय शक्ति का नाम बुद्धि है। परखना, निर्णय करना, निष्कर्ष निकालना। तो जो बात संकल्प में आती है मन में संकल्प के रूप में, वो बुद्धि से फिल्टर होके आगे जाती है। तो मन तो आप ये कह सकते हैं कि थॉट्स लेता है और बुद्धि उसे फिल्टर करती है। जैसे आपने आरओ देखे ना आजकल, पानी आया उसने फिल्टर किया। पहले तो अक्वा गार्ड होते थे, तो उतना फिल्टर थोड़ा एक बार हुआ चल, अब तो तीन तीन फिल्टर लगे होते हैं, कई बार तो आवश्यक मिनरल्स भी निकल जाते हैं उसमें से। वो फिल्टर होके फिर कई बार ऐसा होता है कि फिल्टर आपका चोक हो जाता है और फिर काम नहीं करता। तो आप क्या करते हो, क्या करते हो? सर्विस सेंटर पे ले जाते हो। तो बुद्धि भी फिल्टर का काम करती है और कई बार ये चोक हो जाता है डिसीजंस। कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो सोचते 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 मेरा दिमाग बिल्कुल ही डल हो गया है, नहीं समझ में आ रहा। तो इसका मतलब क्यों फिल्टर आपका चोक हो गया? क्योंकि आपने इसको सर्विस सेंटर पे नहीं ले गए। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय सर्विस सेंटर है। पूरे विश्व में 9000 ब्रांचेस हैं। जो जिसके नजदीक हो वहां जाके अपना फिल्टर साफ करा ले। करा सकते हैं या नहीं करा सकते? तो यू हैव टू ब्रश योर इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को कि ब्रशिंग करो, साफ कराओ इसको या फिल्टर चेंज कराओ। तो कैसे साफ होगा? कहते सत्संग तारे कुसंग डुबोए। ये सत्संग जो है आपकी बुद्धि को डिवाइन इंटेलेक्ट बनाएगा। योर इंटेलेक्ट विल बिकम डिवाइन। क्या बन जाएगी? दिव्य बुद्धि। तो देखो महाभारत में दो काउंसलर थे, एक विदुर और एक शकुनी। विदुर का क्या था? डिवाइन इंटेलेक्ट, वो विक्टोरियस हुए। और दूसरा इंटेलेक्ट डिवाइन नहीं था, तो उनका सर्वनाश हो गया। तो इसलिए बुद्धि पर सारा मदार है। तब कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। जब किसी का विनाश का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। तो मुझे अपने फिल्टर को शक्तिशाली बनाने के लिए, डिवाइन बनाने के लिए रोज मुझे सत्संग करना है। और हम आपको एक बात बता दें, कोई भी फिजिकल बीइंग के पास आप बैठेंगे, शरीरधारी के पास, वो चार बातें अच्छी करेगा, कुछ अपने स्वार्थ की करेगा। आफ्टर ऑल शरीरधारी है ना। लेकिन परमात्मा का संग ही केवल सत्संग है। वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। अगर हम प्योरली उसकी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं वो सत्संग है। तो ब्रह्मा कुमारी में जब आप आते हैं तो आपको कोई बहनें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सुनाती हैं। दीज आर ऑल गॉडली टीचिंग्स, वी आर बीइंग टॉट बाय गॉड हिमसेल्फ। अभी आप देखना ये बातें आपको धीरे धीरे तीसरे दिन तक समझ में आ जाएंगी, परमात्मा कैसे बच्चों से बात करते हैं, क्या विधि है। तो रोज अगर आप यहां स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस लेने के लिए आए, मेडिटेशन का अभ्यास करें, आपकी बुद्धि डिवाइन हो जाएगी। तो अच्छा देखें, अच्छा सोचें, अच्छा सुने, आपका सारा इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव जाएगा तो बुद्धि आपकी डिवाइन होगी। फिर जैसे डिसीजंस लेगी वैसा कर्म होगा, कर्म को रिपीट करने से संस्कार बनेगा। हम कहते हैं संस्कार से आपके व्यक्तित्व की पहचान होगी, महात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा। जैसे कर्म होंगे वैसा संस्कार बनेगा, वैसे आपकी आत्मा का, आपकी व्यक्तित्व की पहचान होगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने संस्कारों को अच्छा बनाना चाहते हो तो अच्छे कर्म को बार बार रिपीट करो। रिपीट करने से इंप्रेशंस आते हैं, उसे संस्कार कहते हैं। समझो मैंने कभी गलती से कुछ बोल दिया जो ठीक नहीं था, मुझे पता है मेरी बुद्धि कह रही है ठीक नहीं है, मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करूं कि आज तो हो गया, कल मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, है ना। हो जाती है गलती, कभी कोई अच्छी चीज है, हम संकल्प करें नहीं ये बहुत अच्छा है, मैं इसको रोज अभ्यास करूंगी। तो ऐसे आपके अच्छे संस्कार बनेंगे, कर्म भी अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। अब आत्मा निराकार ज्योति बिंदु है, शरीर में भ्रिकुटी में निवास करती है, इसलिए कहते हैं भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा। मेडिकल साइंस ने कहा है कि आत्मा ब्रेन में हाइपोथैलेमस में निवास करती है, अगर आप सेंटर देखें तो यहीं बनता है, ठीक है ना। और हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं उसमें कैसे अभ्यास करते हैं कि आत्मा का असली स्थान, ये तो शरीर में निवास स्थान है, असली स्थान परम धाम है। आपको परमात्मा के परिचय में बताया जाएगा कि ये साकारी मनुष्य दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर सूक्ष्म लोक जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर की पुरियां हैं, उससे ऊपर परलोक जहां परमात्मा निवास करते हैं, हम आत्माओं का घर भी वही है। इसलिए कहते दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सबको अपने घर जाना है। तो असली घर परम धाम है, ये सृष्टि एक रंगमंच है, मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस मंच पर अभिनय करने आई हूं। हम सभी अभिनेता हैं, अभिनय कर रहे हैं, हम सबका अलग अलग रोल है। घर में आप पिता, माता, बहन, भाई, देरानी, जिठानी, ये सब अलग अलग रोल्स हैं। ऑफिस में हैं तो आपके ऑफिस के जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो आपका रोल उस समय है। तो एक आत्मा इस देह में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रोल अदा करती है, ठीक है। आपके चार लाइफ के एरियाज हैं, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो चारों एरियाज में आपका अलग अलग रोल है। तो अगर मुझे ध्यान रहेगा कि मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर ये अभिनय कर रही हूं, अगर मैं ऑफिस में हूं, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द दिस ऑफिस, लेकिन जब मैं वहां से बाहर आ गई तो मेरे को क्या करने देना चाहिए, इस डायरेक्टर का मास्क उतार देना चाहिए। अब आप फैमिली में ट्रेवल करने गए हैं, आपका आपकी वाइफ के सामने, यू आर अ लाइफ पार्टनर, रोल चेंज हुआ, मास्क चेंज हुआ। बच्चों के सामने आप कौन है, फादर हैं। अगर आप इस प्रकार का मास्क चेंज करेंगे तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, नहीं तो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर आएगा। और आत्मा का ज्ञान होने से मुझे समझ में आ गया कि मेरा रियल सेल्फ, ये रोल कॉन्शियस नहीं होना, मुझे रियल कॉन्शियस होना है। तो रियल कॉन्शियस क्या है, मैं आत्मा हूं। इस देहरूपी वस्त्र को धारण करके डॉक्टर का रोल अदा कर रही हूं और ये जो मेरे सामने आत्मा है उसको हम ये पेशेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन मेरा जो रोल है इसकी हेल्प करना। ये आत्मा आई है, मुझे जो ज्ञान दिया है मैं उसकी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं और मैं पूरी तरीके से अपने भाई की मदद करूं, तो हमारे रोल में कितनी रिफाइंडनेस आ जाएगी। ठीक है ना? तो जितने भी हमारे अंदर झगड़े हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस से होते हैं। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो ईर्ष्या द्वेष झगड़ा विकार खत्म हो जाएगा। इसलिए आत्मा का जो धर्म है वो है प्योरिटी एंड पीस। तभी हम जब आपस में मिलते हैं हम लोग ग्रीट करते हैं, हम कहते हैं ओम शांति। ओम मीन्स आई एम अ सोल, शांति मीन्स पीसफुल। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब जितनी बार मैं सबसे मिलूंगी उतनी बार मैं ओम शांति से रिसीव करती हूं और अपना परिचय देती हूं, तो बार बार वो दोहराने से मुझे अपने धर्म की याद रहती है। तो जो गीता में कहा गया है, हे अर्जुन अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, पर धर्म दुख देता है स्वधर्म सुख देता है। तो कितनी गहरी बात है, पर धर्म का मतलब शरीर से रिलेटेड धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो इसके कारण सारी फाइटिंग एंड क्वर्लिंग है, ये दुख देने वाला है। स्वधर्म आत्मा का धर्म क्या है? शांति और पवित्रता। ये धर्म आपको क्या देगा? सुख देगा। ठीक है? ये नहीं कि मैं अगर हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम से नफरत करूं, मैं मुस्लिम हूं तो क्रिश्चियन से नफरत करूं, नहीं। शरीर के धर्म दुख देने वाले हैं, कोई ना कोई मतभेद पैदा करने वाले हैं, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? शांति और पवित्रता। देखो हम लोग बोलते हैं शांति और पवित्रता, मुस्लिम भाई कहते हैं अमन और पाकीजगी, क्रिश्चियन कहते हैं प्योरिटी एंड पीस, मीनिंग इज द सेम। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। तो मैं आपको चार बातें फिर से रिपीट करती हूं, क्योंकि जब हम अपना परिचय देते हैं आप देखेंगे अपना नाम लिखेंगे, फोटोग्राफ लगाएंगे, आपका रूप क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका धर्म क्या है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, फिर आपका रेजिडेंस क्या है, परमानेंट एड्रेस टेम्परेरी एड्रेस, फिर आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये परिचय देते हो ना, फिर पिता का नाम भी पूछते हैं, वो तो कल बताया जाएगा। से आत्मा की भी यही पहचान है, मैं कौन हूं? आत्मा, मेरा रूप निराकार ज्योति बिंदु, आई एम ए पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मेरा एड्रेस क्या है? टेम्परेरी एड्रेस भृकुटी और परमानेंट एड्रेस परमधाम। ठीक है? मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सातों गुण मुझ आत्मा के ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे असली गुण हैं, मूल गुण हैं। और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? अभिनेता बनकर अभिनय करना। मेरा धर्म है पवित्रता और शांति। मिल गई अपनी पहचान? क्लियर? अब देखो जब आप आपस से मिलोगे ना क्या बोलोगे? ओम शांति। मैं एक बार ट्रेन में जैसे आ रही थी तो किसी ने मेरे से पूछा, दीदी आपकी तारीफ, आपकी पहचान। तो मैंने उसको बोला, इस शरीर का नाम सरोज है, ऐसे बोला। बोला इस शरीर का नाम, ऐसे बोलना। बस वहां से उनकी खोज शुरू हो गई। अगर मैं एक आम आदमी की तरह बोलती कि मैं मेरा नाम या मैं सरोज हूं ऐसे बोलती तो वो ज्ञान की बात शुरू ही नहीं करते। ज्ञानी के लिए कहा जाता है जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। जैसे केले के पत्ते के बीच में पत्ता होता है ना, से ज्ञानी की बात मीनिंगफुल होती है। वो बात कह गया तो उसका मतलब कोई मीनिंगलेस टॉक नहीं होगी, उसमें कोई राज होगा। तो देखो वो हमारे साथ बैठे और कम से कम बिना कुछ कहे वो हमसे बात करने लगे, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि दीदी अब हम अपने परिवार सहित रेगुलर क्लास करते हैं। और शुरू क्या हुआ था कि आपका परिचय, जब भी हम किसी से बात करें हम अपनी डिवाइन जो इंटेलेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे मिले। ओम शांति। तो अभी हम अभ्यास करेंगे, थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठे, कमर को सीधा रखेंगे, आपकी मदद के लिए पवित्र विचारों का चिंतन आपको देंगे, आप उसी अनुरूप स्वयं को आत्मसात करने का अभ्यास करें। थोड़ी देर के लिए बाह्य जगत से दूर अंतर जगत की ओर स्वयं को ले चले एक ऐसे स्थान पर जहां कोई आवाज नहीं, शांति ही शांति है, या एकांत स्थान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत अच्छा है। अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, चिंतन के बाद आप अनुभव करेंगे मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। इन सर्व कर्म इंद्रियों का राजा हूं, भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं, विजुअलाइज करें आपकी भ्रिकुटी में यह दिव्य सितारा चमक रहा है। जिसके प्रकाश का प्रवाह संपूर्ण शरीर में हो रहा है। मैं आत्मा हल्कापन अनुभव कर रही हूं। हल्की होकर पंच तत्वों की देह को यहाँ त्याग कर अपने असली धाम की यात्रा पर जा रही हूँ। सूर्य, चांद, तारागण से पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, अखंड ज्योति मह तत्व, शांति धाम, परम धाम, जहां लाल सुनहरी रंग का प्रकाश है, बस यही तो मेरा धाम है। विजुलाइज करें, मैं आत्मा अपने स्वीट होम में पहुंच गई हूं। ज्योति के इस धाम में सर्वत्र शांति है, कितनी निर्संकल्पता है, कितना आनंद, कितना हल्कापन, कितनी पवित्रता और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। मैं असली स्वरूप में स्थित हूं, अपने मूल स्वरूप में शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल गुण है। धाम की मैं निवासी हूं। चले जाइए शांति की गहन अनुभूति में। अनुभव करें शांति की महान शक्ति को। इस अनुभव को स्वयं में समाये हुए फिर से लौट आए। इस साकार दुनिया की ओर फील करें, पुनः इस देह में स्वयं को, इस हार्मनी हॉल में। कितनी सुंदर और सुखद यात्रा है। याद रहे, मैं शांति दूत बनकर आया हूं। मुझे शांति का प्रवाह चहुं ओर फैलाना है। ओम।